الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم. مسلمان دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جاوے کاروبار کے لیے رہنے کے لیے تو تین چیزوں کی فکر پہلے کرے، ایک عبادت کے لیے مسجد، دوسرا اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے مکتب مدرسہ، اور تیسرا اپنے مردوں کے لیے قبرستان. یہ تین چیزیں مسلمانوں کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. کہیں بھی رہنے کے لیے آدمی جاوے تو یہ تین چیز دیکھ کر رہنے جاوے. آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے گاؤں میں سے شہر میں رہنے کے لیے آنے کا. جہاں بھی مسلمان رہنے جاوے پہلے نمبر پر یہ دیکھے کہ مسجد کہاں ہے، میرا مکان مسجد سے کتنا دور ہے، اور میں جہاں مکان بنانا چاہتا ہوں لینا چاہتا ہوں وہاں سے میرے بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ کتنا دور ہے. اور اللہ نہ کرے دیر سویرے سب کو مرنا ہے، کوئی انتقال کر جائے تو دفن کہاں کریں گے. تو یہ تین چیز مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے. اب لوگ نئی نئی کالونیوں میں اپارٹمنٹوں میں رہنے جاتے ہیں، قریب میں مسجد نہیں ہوتی تو نماز سے دور ہو جاتے ہیں، اور نماز سے دور ہوتے ہوتے ڈر لگتا ہے ایمان کے ختم ہونے کا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے جو آدمی نماز چھوڑ دے رہے اس نے کفریہ عمل کیا، کفریہ کام کیا. اس لیے مسلمان اس کا خاص دھیان رہے کہ جہاں بھی آپ اپنا گھر بناؤ مسجد بناؤ، और नया घर लो तो मस्जिद के करीब में लो। कॉलोनी बनाते हैं लोग, प्लॉटिंग करते हैं बिल्डर लोग, अपार्टमेंट बनावे, सबसे पहले उसमें होना चाहिए मस्जिद कहाँ होगी। इसलिए ये हमारी दीनी बुनियादी जरूरियात में से है। दूसरा, बच्चों की तालीम के लिए मदरसा और मकतब। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुरान सिखाना जरूरी है, दीन की बुनियादी बातें सिखाना जरूरी है। अगर मदरसा मकतब करीब में होगा तो हमारे बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत होगी, और अगर मदरसा मकतब करीब में नहीं होगा तो सही दीनी तालीम तरबियत नहीं हो सकती। आज मुसलमान इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बारी ताला का हुक्म है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग से कैसे बचेंगे? जब शरीयत और दीन की बातें सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे तो जहन्नम से बचेंगे। बहुत से करने के काम हैं, उसको फराइज वाजिबात कहते हैं, छोड़ने के काम हैं जिसको हराम कहते हैं, तो उसको सीखना पड़ेगा क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या जरूरी है। सीखें, अमल करो। हराम किया है, गुनाह किया है, वो सीखो और बचो, तो जाकर के आदमी जहन्नम की आग से बच पाएगा। इसके लिए मकतब, मदरसा सही ढंग का हमारी बस्ती में होना चाहिए, तो हमारे बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत होगी। और तीसरी चीज, दफन के लिए कब्रिस्तान। आज बहुत सी जगहों के ऊपर कब्रिस्तान करीब में नहीं, दूर दूर ले जाना पड़ता है। अल्लाह हिफाजत में रखे, एक जगह के बारे में सुना कि एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, 25-20 किलोमीटर करीब में कोई कब्रिस्तान नहीं, तो उसको नऊज़ बिल्ला जलाना पड़ा वक्त के ऊपर। ये गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये हमारी कितनी बड़ी गफलत कि हम कॉलोनियां बना देवे, सोसाइटियां बना देवे, लेकिन मुर्दों को कहां दफन करेंगे? कब्रिस्तान की कोई फिक्र करता नहीं है। तो ये तीन बुनियादी जरूरत मुसलमान की, मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, ये हर ईमान वाले को इसकी फिक्र करनी है। अल्लाह ताला ने ये मस्जिदें बनाई, कुरान में है, वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की इबादत के लिए बने हैं। मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, ये असल बनी है नमाज के वास्ते। असल मकसद मस्जिद का नमाज, साथ में बहुत सारे दूसरे दीनी काम यहां होते हैं, एतिकाफ होता है, सीखना सिखाना होता है, कुरान की तालीम होती है, दीन की फिक्रें होती है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में तो मस्जिद में बहुत सारे काम होते थे। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अनु जख्मी हुए, सरदार थे अंसार में, बड़ा ऊंचा मकाम था उनका, तो उनके लिए आईसीयू मस्जिद नबवी में बनाया गया। उनकी तबीयत ऐसी सीरियस हो गई थी, आईसीयू वार्ड उनका मस्जिद नबवी में बना। उनकी तीमारदारी के लिए खेमा हुजूर ने मस्जिद नबवी में लगाया। सुमामा एक अरब के बड़े सरदार थे, साहबा उनको पकड़ के लाए, तो हुजूर ने उनके लिए जेल खाना मस्जिद नबवी को बनाया, मस्जिद में बांधो इसको, जेल खाना भी मस्जिद नबवी। तीन दिन वो मस्जिद में बंधे हुए रहे, इस तीन दिन के लिए छोड़ते थे खाने के लिए। तीन दिन उन्होंने 72 घंटे मस्जिद नबवी का माहौल देखा, तो तीन दिन के बाद उनकी जेल की सजा पूरी हुई, हुजूर ने छुड़वाया। तो मस्जिद नबवी के सामने एक खजूर की बाड़ी थी, वो बाड़ी में गए, जाके गुसल किया और गुसल करके आके कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए, सहाबी हो गए। तीन दिन माहौल देखने की ये बरकत हुई। तो हुजूर के जमाने में तो मस्जिद नबवी जेल भी थी, उसमें बांधा भी है दुश्मनों को, और मेहमान आते थे तो उनका इस्तकबाल, उनका कयाम, वो भी मस्जिद नबवी में होता था। मस्जिद नबवी में जो मुबारक पिलर है, अल्लाह आपको मुझे बार बार मदीना ले जावे, तो एक पिलर पर लिखा हुआ है उस्तवानतुल वुफूद। उस्तवानतुल वुफूद का मतलब ये है कि अलग अलग जगह से लोगों के काफले आते थे, वफद काफला डेप्यूटेशन आते थे, तो हुजूर उनको वहां रुकवाते थे कि यहां रुको। तो मस्जिद नबी मेहमान खाना भी था हुजूर के जमाने में। मस्जिद नबी में नमाज होती थी, तालीम होती थी, आईसीयू वार्ड भी, कैद खाना भी, मस्जिद नबी मेहमान खाना भी, इतने काम लिए जाते थे। गोया के मुसलमानों की दीनी मिल्ली एक्टिविटीज और कामकाज का वो सेंटर था मस्जिद नबी। ईसाई लोग आए नजरान से, सूरह आले इमरान के शान नुज़ूल का वाकया मशहूर है। नजरान से ईसाई लोग आए, 60 या 70 आदमी थे, सारे ईसाई आए सवाल करने के लिए, डिस्कस करने ईमान और ईसाइयत के बीच में। तो हुजूर ने पूरे काफले को मस्जिद नबवी में रुकवाया, नजरान के नसारा के वफद को, यही मस्जिद नबवी में रहो। उन्होंने कुछ काम करना चाहा, अपना मजहब करने दो इनको। तो इस तरीके से मस्जिद तो हमारे पूरे महल्ले के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरी बस्ती के लिए दीनी मिल्ली काम और जरूरियात का सेंटर और मरकज हुआ करते हैं। बड़ा ऊंचा मकाम है मस्जिद का। तो अल्लाह ताला का घर बन जावे, मस्जिद बन जावे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कुरान में अल्लाह ताला ने ये काबतुल्लाह के बारे में फरमाया, इस दुनिया के अंदर शुरुआत में सबसे पहला घर वो मस्जिद काबतुल्लाह बना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका वहुदल लिलआलमीन। अल्लाह का पहला घर जो मक्कतुल मुकर्रमा में है वो काबतुल्लाह है, पहला घर अल्लाह का काबा है। फिर पूरी दुनिया बनी, पूरी जगत विश्व बाद में, पहले मक्का में काबा बना, अल्लाह का पहला घर। और हदीस पाक में आता है कि जब कयामत आने वाली होगी तो कयामत की शुरुआत भी काबा से होगी, काबा से कयामत की शुरुआत होगी। इस तरह के एक हबशी आएगा, लंबा लश्कर लेकर के आएगा, और वो हबशी काबा की दीवार तोड़ेगा, तोड़ेगा काबा की दीवार को, सारे पत्थरों को तोड़ देगा, बस उसके बाद कयामत कायम हो जाएगी। दुनिया की शुरुआत काबा से और दुनिया का खात्मा भी काबतुल्लाह से, और पूरी दुनिया में जितनी मस्जिद है वो काबा की ब्रांच है, ब्रांच शाखाएं हैं, ब्रांच है, और हेड ऑफिस मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह है। और काबा शरीफ अल्लाह ताला ने बहुत पहले बनाया था, इंसानों से पहले काबा बन गया था, फरिश्तों ने बनाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, काबा उठा लिया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बाप बेटे ने मिल करके काबा शरीफ बनाया। और उस वक्त अल्लाह से दुआ की, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। اے اللہ ہم نے کعبہ بنایا آپ قبول کر لیجئے، یہ نیکی قبول کر لیجئے، ہم نے کعبہ بنا دیا. آدمی کو ہر عمل قبول ہو جائے اس کی دعا کرنی چاہیے. آج ہم عمل کر کے چین میں ہوتے ہیں اطمینان میں، نہیں، اعمال کر کے قبولیت کی دعا کرو. ہر عمل اللہ کے یہاں قبول ہو، نماز قبول ہو جائے، صدقہ قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ قرآن میں اللہ نے ہم کو سکھایا. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مکہ تو اس زمانے میں جنگل تھا، جنگل دور دور تک کوئی انسان نہیں رہتا تھا، جانور بھی نہیں، انسان بھی نہیں، بالکل جنگل مکہ المکرمہ. لیکن اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر کے مکہ پہنچے اللہ کے حکم سے، اور جنگل میں رکھ دیا بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو، اور جنگل میں رکھ کر کے دعا کی اللہ تعالی سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ یہ تو جنگل ہے، جنگل میں اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، اور دوسرا کوئی انسان نہیں، ایک عورت ہاجرہ اور چھوٹا معصوم بچہ. اللہ میں ان کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہاں پر نماز کا ماحول قائم ہو جاوے، نماز کا ماحول قائم ہو جاوے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ نماز کا ماحول بن جاوے، اس کے لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مسلمانوں، نماز کا ماحول قائم ہونا بہت ضروری ہے. ہماری عورتیں گھروں میں نماز پڑھے، مرد مسجد میں نماز پڑھے، یہ نماز کا ماحول، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے. ہمیشہ یاد رکھو، جس جگہ کے اوپر نماز کا ماحول قائم ہوتا ہے، مسجد آباد ہوتی ہے، اللہ اس محلے کو، اس بستی کو، اس گاؤں کو آباد رکھتے ہیں، سلامت رکھتے ہیں. اور جب مسجد اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ نہ کرے وہ محلہ اور بستی بھی اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے. جب تک مسجد آباد، محلے بھی آباد، بستیاں بھی آباد، گھر بھی آباد، دل بھی آباد، اور مسجدیں اجڑتی ہے تو گھر بھی اجڑتے ہیں، محلے بھی اجڑتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں. اس لیے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، نماز سے آباد رکھنا، دین کی تعلیم سے اور اللہ کی یاد سے، اعتکاف سے، اس سے مسجد کو آباد رکھنا. تو اتنی بڑی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے اسی نماز کے لیے، نماز کے ماحول کو قائم کرنے کے واسطے. میں آج کل لوگوں کو بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو مجمع ہماری یہاں جمعہ کے دن نظر آتا ہے، وہ مجمع پانچ نماز میں اگر ہو جائے تو ہم نماز کی طاقت سے پوری دنیا میں ایمانی انقلاب برپا کر دیں گے، صرف نماز کی طاقت سے، پھر کوئی طاقت کی ضرورت نہ پڑے. جو مجمع جمعہ میں آتا ہے، وہ مجمع اگر پانچ وقت کی نماز میں ہو جائے تو صرف نماز کی طاقت سے ایمانی انقلاب آ جائے. لیکن آج مسلمان نماز میں بہت غفلت، بہت کوتاہی. جو مجمع جمعہ پڑھتا ہے، ایک بہت بڑا مجمع مسلمان کا ایسا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے، ایسوں کو نمازی بنانا، نماز کے لیے لانا، نماز سکھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. हमारे फराइज में आता है। आज मुसलमान घर पहुंचता है तो घर पहुंचते ही पहले बीवी को कहेगा खाना निकालो, चाय बनाओ, कपड़े लाओ। अरे कभी तो कहो कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, घर वालों को पूछो, बीवी को, बेटी को, बच्चों को पूछो, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अल्लाह कुरान में फरमाते वामुर अहलका बिस्सला वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का ऑर्डर करो। आज हम खाने का ऑर्डर करते, अल्लाह कहते नमाज का ऑर्डर करो। आप अपने घरों पे जाकर के सबसे पहले रिपोर्ट लो कि बीवी ने, बेटी ने, बच्चों ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बाकी खाना पीना, कपड़े, चाय, नाश्ता सब दूसरे नंबर पर, पहला नंबर नमाज का कि लोग ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मुसलमान भाइयों, ये हमारे घरों की नमाज, हमारी अपनी नमाज, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो मेराज के सफर में हुजूर ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फरिश्ते उनको पत्थर मार करके उनके सर को फोड़ देते हैं। आज छोटा पत्थर लगे तो आदमी को कितनी तकलीफ होवे, बड़े पत्थर के जरिए फरिश्ते सर को कुचल रहे, फिर सर अच्छा हो जाता है, फिर मारते हैं, फिर अच्छा हो जाता है, फिर मारते हैं, फिर अच्छा होता है, ऐसी सजा हो रही है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं जिनको ये सजा हो रही है। तो हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार साथ में थे, वो कहने लगे ए अल्लाह के आखिरी नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में फर्ज नमाज में सुस्ती करते थे, फर्ज नमाज में सुस्ती करते थे। ऐसे लोगों को फरिश्ते बड़े बड़े पत्थर मार करके उनके सर कुचलने की सजा देंगे। कितनी खतरनाक सजा। इसीलिए ईमान वाले भाइयों, पांच वक्त की नमाज फर्ज है। हम ये समझते हैं कि खाली जुम्मा फर्ज है, बाकी हफ्ते में पढ़ो न पढ़ो सब चले, ऐसा नहीं है। पांच वक्त की नमाज फर्जियात कंपलसरी, हर मुसलमान जिसमें अकल हो, बालिग हो, समझदार हो, पांच वक्त की नमाज उसके लिए फर्जियात है, फर्जियात है। बल्कि हमारे दीन में तो ये फरमाया कि बच्चे सात साल के हो जाए इनको नमाज पढ़ने का हुक्म करो, बच्चों को, सात बरस के बच्चों को नमाज का हुक्म करो, और दस साल के बच्चे नमाज न पढ़े तो हुक्म दिया मारो इनको। मारने का हुक्म है शरीयत में, मारने का हुक्म है कि मारो। और बाज किताबों में तो मसला ये लिखा है कि नमाज नहीं पढ़ने वालों को इतना मारो, इतना मारो कि खून निकले बदन में से। ये मसला है शरीयत में लिखा हुआ है कि खून निकले इतना मारो नमाज ना पढ़े तो। आज कौन अमल करता है उसके ऊपर? छोटे छोटे बच्चों को शानदार मोबाइल देंगे, शानदार जो है कपड़े सूस लाके देंगे, लेकिन नमाज का कोई एहतमाम नहीं, नमाज की तरफ कोई ध्यान नहीं। बचपन से नमाज की आदत डालो। हदीस में खुद हुजूर ने फरमाया मुरूसी बियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगु सबआ, सात साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो। वद्रिबूहुम अलैहि बिअशरा, दस साल के बच्चे नमाज न पढ़े मारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मारो उसको नमाज न पढ़ने के ऊपर। इसलिए बचपन से इनको नमाज की ताकीद, नमाज का एहतमाम अगर करेंगे तो ये बड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे। बचपन में नहीं सिखाया तो बचपन में भी ये नमाज की आदत नहीं डालेंगे। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ने ये मस्जिद बनवा दी। अब इस मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। कि हम इसको आबाद करें नमाज से, तिलावत से, अच्छे आमाल से। अल्लाह ताला इस मस्जिद को कयामत तक आबाद शादाब फरमावे। जिन जिन लोगों ने जो कुछ उसमें लगाया, अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमावे। हम सब को अल्लाह नमाज को कायम करने वाला बना देवे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Huh?